রাত্রি ক্লাসে লেখা তিরিশ তিন উনিশশো সাতষট্টি দূসরে পেজ কি মধ্যে আদমি বাত চল রহী থি বচ্চে বাপ কা পরিচয় দেনে মে টিক টিক করকে থকায় দেতে হ্যাঁ মে মনুষ্য কো সমঝাতা হুম কি ইয়ে স্থাপনা ভারত মে হুই থি ये भगवान फादर की समझाने ठीक पड़ती है। भगवान न कह करके फादर फादर ही करते रहते हैं। तो वो है हमारा फादर। वी आर ऑल चिल्ड्रन। अच्छा फादर तो स्टेब्लिश करते हैं पैराडाइज को, जन्नत का निर्माण करते हैं, क्योंकि हेवनली गॉड फादर गाया हुआ है ना, तो हेवन रचने वाला फादर है। अच्छा ये भारत हेवन था ना, क्या नाम दिया है विन, विन माने जीता, है माने जीता है, क्या जीता है, सारी दुनिया का राज्य जीता है। तो जो सारी दुनिया का राज्य जीता उसका नाम दिया है विन। फिर बाद में तो ये हेल जरूर बनना है, क्योंकि सत्य चित्त आनंद जिसे भगवान कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, वो सदा सत्य सतो प्रधान दुनिया का निर्माण करता है, और सतो प्रधान दुनिया में रहने वाली मनुष्य आत्माएं देव आत्माएं कहो सात्विक जीवन तो जीती हैं, परंतु जो सात्विक इंद्रियां हैं ज्ञान इंद्रियां, उन ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगते हैं, और वो ज्ञान इंद्रियां भी देह का अंग हैं। देह विनाशी तो इंद्रियों का सुख भी कैसा? विनाशी। तो देखो, देवताओं की सत्व प्रधान सतोगुणी दुनिया से ही देह का सुख भोगने के कारण पतन होने लगता है दुनिया का। पहले धीमी गति से पतन होता है, बाद में ये दुनिया प्रकृति के तीन गुणों से पसार जरूर होती है, क्योंकि दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है। सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तमो। तो भगवान सत्य ने, ट्रुथ गॉड फादर ने जो सतयुग रचा था, वो सतयुग भी तीन अवस्थाओं से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से पसार होते होते तामसी दुनिया कलयुग बन जाता है। दुनिया की हर चीज प्रकृति के तीन गुणों से बंधी हुई है। ये प्रकृति ही तीन गुणों वाली है। सत्व प्रधान के बाद रजो प्रधान बननी है, रजो प्रधान के बाद तमो प्रधान बनना ही है, और जब पूरा तमो प्रधानता छा जाती है, सारी दुनिया में अज्ञान अंधकार छा जाता है, तब उस महान अंधकार के अंदर महाशिवरात्रि में सत्य बाप, जिसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, वो इस सृष्टि को तमो प्रधान से आकर सतो प्रधान बनाते हैं। तो देखो, भगवान आकर के पुरानी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, और मनुष्य आत्माएं तमो प्रधान बनाई देती हैं। मना नर मन मनुष्य नरक बनाता है, और हेवनली गॉड फादर स्वर्ग बनाता है। तो ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है, नई दुनिया फिर पुरानी दुनिया बन जाती है। तो देखो, अभी भी भगवान बाप आया हुआ है, जो सदा सत्य है, वो गॉड फादर इज ट्रुथ जो कहा जाता है, वो नई दुनिया बना रहा है। तो अभी ये दुनिया पुरानी भी बनेगी। कब बनेगी? कितने समय के बाद पुरानी बनेगी? है? है? जोर से बोलो। पांच हजार वर्ष के बाद पुरानी बनेगी। क्यों? अभी संगम युग में 5000 वर्ष की दुनिया का रिहर्सल नहीं किया जा रहा है, है? पांच हजार वर्ष की दुनिया का रिहर्सल हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो जब सतो प्रधान भगवान बनाता है तो तमो प्रधान कौन बनाता है रिहर्सल पीरियड में? अरे रिहर्सल भी तो वैसा ही होगा ना, 5000 वर्ष में जो ड्रामा रिपीट होगा, सत्व प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो, तो रिहर्सल में भी ऐसे ही रिपीट होगा ना? नहीं होगा? होगा। तो पूछा, भगवान जो अभी सत्व प्रधान दुनिया बना रहा है वो दुनिया अभी माना संगम युग में ही तमो प्रधान बनेगी या नहीं बनेगी? है? बनेगी। पहले नई से फिर ये पुरानी बननी ही है। ब्रॉड ड्रामा में भी नई दुनिया फिर पुरानी दुनिया बनती है, और रिहर्सल में भी शूटिंग में भी नई दुनिया पुरानी दुनिया बनती है। तो फिर बता देना चाहिए ये चक्कर की बात को कि पहले गोल्डन एज, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर एज, अभी इस दुनिया में आयरन एज है। जब गोल्डन एज थी तो इस दुनिया में पहले वो डिटीज थे, देवताएं थे, पहले वो थे देव आत्माओं की दुनिया। पीछे इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन, अभी तो ये झाड़ पूरा होता है, पुराना होता है, अभी बाप आकर के कहते हैं इस पुराने झाड़ में तुम सब 500-700 करोड़ पत्ते पतित बन पड़े हो। झाड़ जब पूरा हो जाता है, पुराना हो जाता है, सूखने लग जाता है, तो पत्तों का क्या हाल होता है? हैं? अरे पत्ते भी झड़ जाते हैं, क्या होता है? जो ऊंची स्टेज में थे वो पतित हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो अभी तुम भी पतित बने हो, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट इन धर्मों में जाने से, इनके संग के रंग में आने से तुम भारतवासी बच्चे पतित बने हो, अनेकों के संग के रंग में आने से पतित बने हो। अभी पावन बनने के लिए क्या करोगे? है? अनेकों के संग के रंग से पतित बने, जो अनेक इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट थे वो सब गिरती कला वाले थे या चढ़ती कला वाले थे? हैं? गिरती कला वाले थे, और गिरती कला में भी द्वैतवादी थे, दो दो बातें बोलने वाले थे, या सत्य को बोलने वाले थे, द्वैतवादी धर्म पिताएं थे, उनके फॉलोअर्स भी द्वैतवादी थे, दो दो धर्म, दो दो धारणाएं, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो मतें, दो दो कुल, दो से चार, चार से आठ, गिरते ही चले गए। अभी क्या करेंगे, जो पतित से पावन बन जाओ है, अनेकों के संग के रंग से तुम भारतवासी द्वैतवादी द्वापर युग से कन्वर्ट होते होते पतित बन पड़े। अब एक के संग के रंग से पावन बनना है, तो जिस एक के संग से रंग लगा करके पावन बनना है, उसको पहचानना है या नहीं पहचानना है। पक्का पक्का पहचानना है, अपनी अकल से पहचानना है या दूसरों के कहने से मान लेना है, हैं? क्योंकि तुम भारतवासी बच्चे जानते हो कि हमारी आत्मा में, खास भारतवासियों की आत्मा में, ये संस्कार भरा हुआ है। क्या? कि सुनी सुनाई बातों के आधार पर है दुर्गति को पाते। तो अभी भगवान बाप आया हुआ है, मुकर्रर रथ में आया हुआ है, तो दूसरों की सुनी सुनाई बातों के आधार पर मानेंगे या अपनी बुद्धि अप्लाई करके मानेंगे, अपनी बुद्धि से समझ करके मानेंगे या दूसरों ने सुना दिया तो मान लेंगे? क्या करेंगे, हैं? सुनी सुनाई बातों के आधार पर मानेंगे? नहीं। अरे क्या करेंगे, हैं? अरे सुनी सुनाई बातों के आधार पर तो भारतवासियों ने दुर्गति पाई, अभी क्या करेंगे, हैं? हाँ, अभी इस लास्ट जन्म में हम सबको बुद्धि हजार नियामत मिली है, हरेक आत्मा को अपने अपने पूर्व जन्मों के किए हुए अनुसार हजार नियामत, ड्रामा ने कहो, भगवान ने कहो, हमको दी है। तो उस बुद्धि के आधार पर परखना है, जानना है कि वो ऊंचते ऊंचे भगवान कौन है जो सदा सत्य है, सत्य धाम का वासी है, तो वो भी सत्य है। और सदा सत्य धाम का वासी नहीं है, इस दुनिया का वासी है, जिस दुनिया के वासी में वो सत्य धाम का वासी प्रवेश करता है, मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। तो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, सुप्रीम बाप का पार्ट बजाता है, सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाता है, सदगुरु का पार्ट बजाता है, और तीनों ही पार्ट एक के द्वारा बजाता है। उसे एक को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? कोई ने कह दिया, कोई ने सुना दिया तो मान लेंगे है?
अरे
अरे गुरुओं ने, इन देहधारी गुरुओं ने हमें जन्म जन्मांतर गिराया है झूठी झूठी बातें सुना करके। इस दुनिया में सारे ही झूठे हैं, एक ही सच्चा है। जो सच्चा है वो सदा काल होता है, या कभी होता है कभी नहीं होता। सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी, और कलयुग बीत जाएगा तो भी होता है। दुनिया का महाविनाश होने के बाद भी होता है। वो सदा सत्य है, सत्य धाम में तो सत्य आत्मा सदा सत्य है। जो जन्म मरण के चक्र से न्यारी आत्मा है, जिसका नाम शिव है, वो सदा सत्य है। लेकिन वहां तो तीनों काल नहीं होते हैं। सत्य धाम में, परम धाम में, ब्रह्मलोक में भूत भविष्य वर्तमान तीन काल होते हैं, हैं? नहीं होते। इस दुनिया में तीन काल होते हैं, तो उन तीनों कालों में जो मनुष्य आत्मा सदा सत्य है, क्योंकि उस सदा सत्य में ही सत्य धाम वासी जन्म मरण के चक्र से न्यारा शिव प्रवेश करता है। जिसके संग के रंग से वो भी सत्य बन जाता है। सदा सत्य का संग करेंगे तो क्या बनेंगे? सत्य बनेंगे। चोर डकैतों का संग करेंगे तो चोर डकैत बनेंगे। तो पहचानना है, और इस संगम युग में ही पहचानना है। जबकि कलयुग और सतयुग का संगम होता है, अच्छी तरह से जानकारी लेनी है कि सब मनुष्य सृष्टि में सदा सत्य रहने वाला मनुष्य कौन है। मनुष्य आत्मा है, देव आत्मा है, या राक्षसी आत्मा भी बनकर के पार्ट बजाता है, लेकिन इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जरूर रहता है। तो वो कौन है, कैसे जानेंगे है? कौन बताएगा है? अरे कोई बताएगा या नहीं बताएगा है? कौन? हाँ, वेद के दो बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप। जो मनुष्यों का वेद का बाप है, वो साकार सो निराकार भगवान, और जो आत्माओं का बाप है वो निराकार भगवान। परंतु निराकार साकार के संग में आकर के दोनों ही रूप धारण कर लेता है। या यूं कहें कि जो साकार मनुष्य आत्मा है वो निराकार के संग में आते आते निराकार बन जाती है। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोला, मैं आता हूं तो तुम बच्चों को नंबर बार आप समान बनाकर जाता हूं, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाकर जाता हूं, तो नंबर वार बनेंगे या एक जैसे बनेंगे? नंबर वार बनते हैं। जो अब्बल नंबर निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनता है वो भी षष्ठी रूपी रंगमंच पर निराकार सो साकार बाप समान बन जाता है। आत्माओं का बाप नहीं बन जाता है लेकिन बाप समान बन जाता है। जैसे मुसलमान लोग भी कहते हैं, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जैसे हिस्ट्री में भी जो भी राजाएं हुए उन राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राजा ही दी। छोटे बच्चों ने उस बड़े भाई को बाप समान स्वीकार कर लिया। बड़ा भाई किसके समान? बाप समान होता है लेकिन बाप तो नहीं होता है, बाप समान होता है बाप नहीं होता है। ऐसे जो बाप समान बनता है बड़ा भाई 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में, वो हम सबका बाप समान है। मना निराकार भी है और साकार भी है। अगर सिर्फ निराकार होता तो बाप कहा जाता, लेकिन सिर्फ निराकार होता है क्या? होता है, है? अरे जो बड़ा भाई है वो बाप होता है कि बाप समान होता है? बाप समान होता है, इसलिए निराकारी तो बना लेकिन साकार शरीरधारी भी रहता है। क्योंकि षष्ठी रूपी रंगमंच पर तीनों कालों में ऐसा पार्ट बजाने वाला मनुष्य आत्मा है जो कभी साकार शरीर छोड़ता नहीं है। नहीं समझ में आया? है सारी दुनिया का विनाश हो जाता है, सारी मनुष्य आत्माएं अपना अपना शरीर छोड़ देती है, महामृत्यु में चली जाती है, परंतु वो आत्मा अपना शरीर छोड़ती नहीं है। इसलिए कालों का काल महाकाल गाया जाता है। वो काल चक्र को लांग जाने वाली आत्मा है, तीनों कालों को क्रॉस करने वाली आत्मा है। तो बताया उस महाकाल को पहचानना है, जान लेना है। शूटिंग पीरियड में भी वो अनिश्चय की मौत में मरने वाला होगा नहीं होगा? और सारी दुनिया अनिश्चय की मौत में मारी जाती है। ये बेहद की मौत की बात है। बेहद का निश्चय रूपी जन्म बाप के ऊपर निश्चय हुआ माने जन्म हुआ, और बाप के ऊपर अनिश्चय आ गया माने मृत्यु हो गई। तो ऐसे बाप को पहचानना है जो महाकाल है, रुद्र कहा जाता है। ऐसा रुद्र अर्थात भयंकर रूप धारण करता है कि उसके काल के गाल में सारी दुनिया समा जाती है, इसलिए उसे रुद्र कहा जाता है। इस नई दुनिया की जब स्थापना भी होती है तो भी उस रुद्र के द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा जाता है। जैसे ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बना, ऐसे ही रुद्र के द्वारा अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र ज्ञान यज्ञ भी अविनाशी है। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ का रचयिता भी अविनाशी है। आदि में अविनाशी है तो अंत में भी अविनाशी है। तो देखो ऐसे अविनाशी को पहचान करके याद करेंगे तो पावन बन जावेंगे। बाकी तो इस दुनिया में सब पतित हैं। पतित हैं इसलिए महामृत्यु में कोई भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि पतितों की दुनिया ही खलास हो जाएगी। शरीर खलास हो जाएंगे या आत्माएं खलास हो जाएंगी, सबके शरीर खलास हो जाएंगे, परंतु जो आत्माएं हैं वो नंबर वार इस सृष्टि पर आवेंगी। किस हिसाब से नंबर बनेंगे है? रिहर्सल टाइम पर इस संगम युग में जो आत्माएं जितना जल्दी निश्चय बुद्धि बनेंगी बाप को पहचान करके, और सदा काल के लिए संगम युग में निश्चय बुद्धि बनेंगी। अमरनाथ के बच्चे अमर बनेंगे, वो जिस नंबर पर अमर बनते जाएंगे उसी नंबर पर इस दुनिया में जन्म लेते जाएंगे। तो पहला जन्म किसका होगा इस दुनिया में है मनुष्य सृष्टि के बाप का जन्म होगा। उसके बाद दूसरा जन्म किसका होगा है? लक्ष्मी का जन्म होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर किसका जन्म होगा है? किसका जन्म होगा? कृष्ण बच्चे का जन्म होगा। माना दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा सतयुग में पत्ते के रूप में जन्म लेगी। पहला पत्ता उसको जन्म देने वाले दो बीज, जैसे चने का बीज होता है, वृत्ति मार्ग का बीज है। तो मात पिता हुए बीज और राधा कृष्ण वाली 16 कला संपूर्ण आत्माएं हुई मनुष्य सृष्टि के पहले नंबर के पत्ते। उसके बाद औरों का नंबर लगता जाएगा। तो बताओ पहले जन्म में सतयुग की पहली पीढ़ी में राधा कृष्ण के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी? वो सारे बच्चे हैं? 9 लाख बच्चे हैं क्या? हैं? हाँ, राधा कृष्ण जैसे बच्चों की संख्या 4.5 लाख और उनको जन्म देने वाले माँ बाप की संख्या 4.5 लाख। तो पहली पीढ़ी में टोटल मिला करके कितनी संख्या हुई? 9 लाख। पहले जन्म के अंत तक 9,16,108। उसके बाद ये कौन सा वंश गिना जाएगा? 9,16,108 ये कौन सा वंश कहा जाएगा? सूर्यवंशी बच्चे। चंद्रवंशी नहीं है? राधा कृष्ण वाली आत्माएं उनको सूर्यवंशी कहेंगे या चंद्रवंशी? है चंद्रवंशी। क्यों? जो बाप का वंश होता है बाप के घर में जन्म लेने वाले बच्चों का भी वो ही वंश होता है ना। तो राधा कृष्ण को जन्म देने वाले माँ बाप का वंश कौन सा? तो बच्चों का सूर्यवंश। इसी तरह जो 4.5 लाख आत्माएं मात पिता के रूप में जन्म देने वाली होंगी और 4.5 लाख आत्माएं बच्चों के रूप में जन्म लेने वाली होंगी, टोटल मिलाकर के ये 9,16,108 हैं, जो पहले जन्म में पक्के 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी बनते हैं। तो नंबर बार उसके बाद दूसरी पीढ़ी में 9,16,108 के बाद किस आत्मा का जन्म होगा? चंद्रवंशी का है। सतयुग में सूर्यवंश नहीं होता है। सतयुग में सूर्यवंशियों की 8 गद्दियां नहीं चलती हैं, चलती हैं। तो दूसरी पीढ़ी में चंद्रवंश कहां से आ जाएगा? दूसरी पीढ़ी में भी जो राधा कृष्ण के माँ बाप को पौत्र पौत्रियां पौधे पैदा होंगे वो सूर्यवंशी नहीं होंगे, होंगे चाहे पुत्र हो पुत्रियो पौत्रो पौत्रियो प्रपौत्रो प्रपौत्रियो यो जो भी वंश में जन्म लेने वाले होते हैं वो सब सूर्यवंशी कहे जाते हैं। 8 पीढ़ियों तक सतयुग चलता है तो बताओ 9,16,108 के बाद जो आत्मा जन्म लेगी वो कौन सी आत्मा होगी? है सेकंड नारायण तो होगा। वो सेकंड नारायण दूसरी गद्दी में जो काबिज होगा वो कितने कला संपन्न होगा? है पौने 16 कला संपूर्ण। ये कलाएं क्यों घट गई है? किसके संग के रंग से है? अरे आंख के संग के रंग से राधा कृष्ण वाली आत्माएं जो पहली पीढ़ी में जन्म लेती हैं वो नीचे नहीं गिरती? तो आंखों से भी नीचे उतरेंगे दूसरी पीढ़ी वाले या नहीं उतरेंगे? हैं? उतरेंगे। मना जो दूसरी पीढ़ी में जन्म लेने वाले हैं वो आंखों तक सीमित नहीं रह सके, ज्ञान इंद्रियों में जो सबसे ऊंची आंखें हैं उन आंखों का सुख लेने में नीचे गिर गए। इसलिए नंबर 2 की पीढ़ी में उन्हें जन्म लेना पड़ता है। क्यों नीचे गिर गए? क्योंकि संगम युग में जब ब्राह्मण बने थे तो उन्होंने शिव बाप की मत को पूरा फॉलो नहीं कर पाया, न समझने के कारण। क्यों नहीं समझा? क्योंकि वो आत्माएं द्वापर युग में द्वैतवादी युग शुरू होने से ही इब्राहिम के इस्लाम धर्म में आकर कन्वर्ट हो गई थी, और इब्राहिम दृष्टि के सुख से संतान पैदा होती है, ये इब्राहिम वाली आत्मा की बुद्धि में ये बात नहीं बैठती। और इब्राहिम के धर्म में जो कन्वर्ट होते हैं भारतवासी आत्माएं उनकी बुद्धि में भी नहीं बैठता, इसलिए वो संगम युग में आकर के इस बात को नहीं मानते कि एक ऊंचे ते ऊंचे बाप की दृष्टि के संग के रंग में आने से हमारा उत्थान होगा, हम पावन बनेंगे। इस बात को वो आत्माएं नहीं स्वीकार कर पाती, इसलिए उनका कहना है कि दृष्टि से सृष्टि सुधरती है लेकिन वो पहचान नहीं पाते कि किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, है? हाँ। एक ऊंचे ते ऊंचा बाप जो हीरो पार्टधारी के तन में आता है और उस तन में आकर के इंद्रियों को कंट्रोल करता है। कौन? शिव बाप। वो शिव बाप इंद्रियों को कंट्रोल करने के कारण जिन आत्माओं को भी दृष्टि देगा उन आत्माओं का उत्थान होगा या पतन होगा? उत्थान होता है। लेकिन इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले वो दो नंबर के ब्राह्मण गिरती कला में दूसरे नंबर के ब्राह्मण इस बात को पक्का नहीं समझ पाते कि एक ही दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। इस मनुष्य सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है जिसकी दृष्टि से सृष्टि सुधर कर सूर्यवंशी बन जाए। क्या कहा? इस्लाम वंशियों में जो श्रेष्ठ है इब्राहिम, उसकी दृष्टि से सुधर करके कोई सूर्यवंशी नहीं बन सकता। फिर क्या बन सकता है? अरे जैसा संग तो क्या बनेगा? सूर्यवंशी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? है? अरे अरे जिसका संग उसका ही रंग। तो इब्राहिम है इस्लाम धर्म का ऊंचे ते ऊंचे। और इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले दो प्रकार के हैं, एक आधार मूर्त ब्राह्मण और एक उद्धार मूर्त ब्राह्मण। हर ऊपर को हरण करके ले जाने वाले ब्राह्मण, दृष्टि की पावर से ऊपर को हरण करके ले जाएंगे। लेकिन जो असली ज्ञान सूर्य है कौन? शिव बाप। वहां तक नहीं ले जा सकते। कहां तक ले जाएंगे? है मनुष्य सृष्टि के बाप तक भी नहीं ले जा सकते। कहां ले जाएंगे? जो भी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाला ग्रुप है आधार मूर्त या उद्धार मूर्त नंबर वार, उन तक ही ले जा सकते हैं। इसलिए औरों की दृष्टि का संग लेकर के जो भी उनके रंग में रंगेंगे वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होंगे, सूर्यवंशी नहीं बन सकते। इसलिए बताओ कि पहली पीढ़ी में जो जनसंख्या होगी राधा कृष्ण के राज्य में, अव्वल नंबर नारायण के राज्य में, वो जनसंख्या 9,16,108। उसके बाद जो नारायण जन्म लेगा वो कम कलाओं वाला हो गया कि पूरा 16 कला रहेगा? कम कला क्यों हो गई? हैं? क्योंकि ऊंचते ऊंच बाप को नहीं पहचाना, इसलिए कमजोरी रह जाने के कारण वो आत्माएं द्वापर युग आते आते इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह तीसरी चौथी पांचवी से लेकर आठवीं पीढ़ी तक सतयुग में दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जो संगम युग में गिरती कला की नीची कुरियों में आने वाले ब्राह्मण हैं, वो कन्वर्ट होते रहते हैं। क्यों कन्वर्ट हो गए है? क्योंकि उन्होंने ऊंचते ऊंचे बाप को नहीं पहचाना। नंबर बार जो नीचे नीचे धर्म पिताएं हैं उनको अपना बाप बना लिया, उनसे सुनने लगे, उनके ज्ञान का बीज अपनी बुद्धि में डाल लिया, बुद्ध रूपी पेट में और धर्म पिताओं का ज्ञान का बीज डालने से वो आत्माएं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है। इसलिए ब्रह्म वाक्य है, एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अगर औरों से सुना तो हाँ दुर्गति के धर्मों में चले जावेंगे। सतगति जो सतयुग की गति है उस गति में नहीं जावेंगे। पांच सौ सात सौ करोड़ आत्मा की सदगति होती है या नहीं होती है? होती तो है, लेकिन कोई की त्रेता में सदगति होगी? पूरे चौरासी जन्म की नहीं होगी। कोई की द्वापर में सदगति होगी एक जन्म के लिए, लेकिन वो आत्माएं भी ज्यादा से ज्यादा 63 जन्म लेंगी। फिर कोई आत्माएं कलयुग में आएंगी सत्यधम से, उनको भी एक जन्म की सदगति मिलेगी, लेकिन सतयुगी 16 कला संपूर्ण स्टेज की नहीं। कलयुग में कलाएं कम हो जाती है ना? नहीं है? हाँ, तो ये हिसाब है, इस हिसाब को अच्छी तरह से धारण करना है कि अगर हमें ऊंचे से ऊंची सदगति प्राप्त करना है तो क्या करें? ऊंचे से ऊंचे ऊंचे से ऊंचे भगवंत को पहचाने, जो इस संसार में प्रैक्टिकल शरीर की इंद्रियों के साथ पार्ट बजाता है और मनुष्य आत्माओं को अपने संग के रंग में लेता है। जैसा संग वैसा रंग लगता है। अगर सूर्यवंशी बाप को पहचान करके सूर्यवंश का रंग लेंगे तो सूर्यवंशी आत्मा बनेंगे, कभी भी किसी भी जन्म में कोई दूसरे धर्म वालों के सामने नजर नीची नहीं झुकाएंगे। क्या कहा? झुकेंगे नहीं झुकेंगे। देहं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। क्या बनना है? है सूर्यवंशी बनना है, इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन आदि बनना है, या गधेड़ों के वंश में जाना है? बनना है तो सूर्यवंशी बनना है। कैसे बनेंगे? एक बाप नहीं, बाप तो 84 जन्म में 84 भी होते हैं। कोई भी एक बाप को चुन लो, चुनेंगे नहीं चुनेंगे? तो कौन से बाप को चुनेंगे? कौन से बाप को जानेंगे? कौन से बाप को समझेंगे बुद्धि से कि ये हमारा बेहद का बाप है, बेहद की मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला है? कैसे पहचानेंगे? कौन पहचान देगा?
अरे
है? कौन कैसे पहचानेंगे वो शिव बाबा है? क्या ज्ञान? ज्ञान तो ब्रह्मा ने भी दिया। ब्रह्मा ने ज्ञान नहीं दिया तो ब्रह्मा को बाप मान लेंगे? अरे आसाराम बापू भी लाखों की पब्लिक को ज्ञान देते थे। वो ज्ञान लेने वाले समझते थे ऐसा ज्ञान तो कोई नहीं सुना सकता जैसा हमारे आसाराम बापू सुनाते। तो क्या उनको बाप मान लेंगे? अरे अरे मनुष्य सृष्टि का जो बाप, इस मनुष्य सृष्टि में तीनों काल में उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है, उस बाप का परिचय किससे लेंगे? कौन देगा उसका परिचय?
अरे
अरे है शिव बाबा देंगे। वो शिव बाबा के बारे में तो कह रहे हैं, उस शिव बाबा को कैसे पहचानेंगे? शिव बाबा की पहचान कौन देगा कि ये है शिव बाबा? या कहने मात्र से, सुनाने मात्र से मान लेंगे? क्या प्रूफ है? गीता में क्या अव्यक्त मूर्ति? वो तो शिवलिंग रखा हुआ, वो शिव बाबा है, वो शिव बाबा है, वो कागज का बना हुआ रखा है। हाँ फिर कैसे जानेंगे? वो अव्यक्त मूर्ति है, उसको हाथ पांव नाक कान नहीं दिखाई पड़ते। वो मूर्ति तो है लेकिन हाथ पांव नाक कान नहीं दिखाई पड़ते, इसलिए अव्यक्त है। वो है कागज वाला, भक्ति मार्ग में पत्थर वाला मानते हैं। आप कैसे मानेंगे?
अरे
क्या ज्ञान? वो ज्ञान हमें भी बताओ तो हम भी उसको फॉलो करें। है
आप सतगुरु देव की प्रश्न आते हैं?
है
आप
सतगुरु?
वो बाप भी है, वो टीचर भी है, वो सदगुरु भी है, वो कागज पे बना हुआ है, वो अव्यक्त मूर्ति दिखाई देता है। वो मूर्ति ऐसी है जिसको हाथ पांव ना कान कान नहीं दिखाई देते, अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है हाथ पांव ना कान कान, देख लो है? कौन है वो बाप? माँ कहाँ है? वो माँ कहाँ है? हे प्रभु, कहाँ चक्कर में डाल दिया?
साहल परिवार में एक डॉक्टर के युवा का ध्यान आंसर देते
हैं।
हैं? सारा ब्राह्मण परिवार में
है
से सब वार्तालाप का आंसर को जवाब देती है हमारा बाप।
माने जिससे साफ बातों का जवाब मिल जाए, इंटरनेट में एक 5-7 साल का बच्चा, उससे जो सवाल पूछो उस 7 सवाल का जवाब देता है एक्यूरेट, तो वो हमारा बाप है क्या? हा? उस बच्चे को अपना बाप मान लें?
आज में बचने अंतमें भी एक ही प्रश्नार्थी में आते हैं, बाप टीचर सदगुरु मात्र एक ही प्रश्नार्थी में आते हैं।
हाँ,
मुरली का आधार से मध्यदेश में आते हैं, मगर बच्चे उधर गांव में गंदे गांव में आते हैं, एक व्यक्ति में
है?
एक व्यक्ति में आज में ये बाप का पार्ट है, मध्य में टीचर का पार्ट है, अंत में सदगुरु का पार्ट है।
हाँ,
तीनों काल के प्रूफ है या प्रकार?
प्रूफ कहाँ है? सदगुरु तो अभी पार्ट ही शुरू नहीं हुआ।
नहीं हुआ, टीचर का पार्ट चल रहे हैं, अंत में सदगुरु का पार्ट चल रहे हैं।
नहीं चल रहे अभी, अभी सदगुरु शुरू ही नहीं हुआ।
चलेंगे?
हाँ चलेंगे,
अंत में सदगुरु का पार्ट चलेंगे, अभी भी टीचर का पार्ट चलेंगे।
वो कैसे माने कि यही टीचर है, सबसे अच्छी व्याख्या देता है? क्या ज्ञान? गीता का क्या श्लोक है जिस श्लोक से ये पहचाना जाए कि यही मनुष्य सृष्टि का बाप? बैठ गए।
भगवत किसमें है? जी शरीर कौंतेय
इदम शरीरम कौंतेय क्षेत्रम मित्य विधीयते। हे कौंतेय अर्जुन, ये जो तुम्हारा शरीर है ये क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, तो कौन सा क्षेत्र है, कौन सा, कौन अर्जुन है, कहाँ है, कैसे पता चले? प्रूफ चाहिए।
5000 ड्रामा में 1 सेकंड की बात कम नहीं है।
ये भी है, ये भी है, ये भी है, किसी का पार्ट कम नहीं है। प्रूफ चाहिए, सिर्फ कहने मात्र से कोई नहीं मानेगा। बाबा ने बोला बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। हाँ बताया कि बेहद के बाप का परिचय बेहद के बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता। वो बेहद का बाप भारत में ढेर के ढेर मंदिर हैं जिनमें उस बाप की पूजा होती है। बाप के यादगार मंदिर बने हुए हैं। उन मंदिरों में उस बाप की मूर्ति दिखाई गई है। उस एक मूर्ति के सामने ही जो भी भक्त जाता है वो एक के सामने खड़े होकर कहता है, तू ही मेरी माता है, दूसरा नहीं, तू ही मेरा पिता है, दूसरा तीसरा नहीं। शिवलिंग के सामने जाकर कहता है, वो एक ही शिवलिंग मूर्ति है, वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, तमेव सर्वम मम देव देव, तू मेरा बंधु भी है, सखा भी है, मना सर्वम मम देव देव, तेरे के साथ मेरे सर्व संबंध हैं। जो आत्माओं का बाप है उसके साथ एक ही संबंध, और उस शिवलिंग के साथ सर्व संबंध। तो वो स्वयं ही अपना परिचय दे सकता है दुनिया में, जिसकी यादगार सारी दुनिया में मंदिर बने हुए हैं, जिसकी मूर्तियां दुनिया में जितनी भी देश देशांतर में खुदाइयां हुई हैं, सबसे जास्ती संख्या में वो मूर्तियां मिली हैं। इससे क्या साबित होता है? वो सबका बाप है, सर्वधर्म पिताओं का, सर्वधर्म पिताओं के फॉलोअर्स का भी बाप है। वो बाप वो लिंग रूप का परिचय सिवाय उस लिंग स्वरूप बाप के कोई नहीं दे सकता। लोग पूछते हैं, ये भारतवासी क्या गोल पत्थर रखा है, इसकी पूजा करते रहते हैं। अरे पत्थर बुद्धि है भारतवासी। भारतवासी बेचारे चुप, क्या जवाब दे। वो कहते हैं अंधश्रद्धालु है ये भारत के लोग, अंधविश्वासी है। भारतवासी चुप, क्या जवाब दे। अरे तुम जिसे भगवान माने बैठे हो, वो भगवान तुम्हारा जो कर्म करता है वही कर्म दुनिया के सारे मनुष्य मात्र कर रहे हैं, वो ही कर्म दुनिया के सारे प्राणी मात्र, पशु पक्षी पतंगे कीड़े मकोड़े सारे वो ही कर्म करते हैं। तो सब भगवान हुए ना, आत्मा सो परमात्मा हुई ना, मान लेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? सही बात तो कहते हैं, तुम्हारी गीता में ही तो लिखा हुआ है कि भगवान कहते हैं, मैं जो कर्म करता हूं मेरे कर्मों को सारी दुनिया फॉलो करती है। तो देखो शिवालय में वो तुम्हारा शिवलिंग रखा हुआ है, भगवान जो कर्म कर रहा है वो कर्म सारी दुनिया की आत्माएं कर रही है। तो इस बात को मान लें कि सभी आत्माएं सो परमात्मा है। नहीं, क्यों नहीं
सब नीचे गिर जाते
हैं?
सब नीचे गिर जाते,
सब
नीचे गिर जाते,
सब नीचे गिर जाते। वो नहीं नीचे गिर रहा है, वो गड्ढे में नहीं जा रहा है। अरे दिखाई नहीं पड़ता
आत्मा सो परमात्मा, एक आत्मा है,
वो ही तो सवाल है। वो एक कौन है जो उसका असली परिचय देता है? वो है कौन? बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता। वो बाप ही बताता है कि आत्मा, हर आत्मा परमात्मा नहीं, और हर आत्मा की यादगार वो नहीं, हर आत्मा की यादगार मंदिर, वो क्या नाम, खुदाइयों में नहीं मिलेगी, उस एक आत्मा की ही यादगार है जो दुनिया के सभी शिवालयों में देखी जा सकती है, और वो सृष्टि के आदिकाल की बात है। सृष्टि के आदिकाल में, कलयुग के अंत में, झूठ खंड के अंत में, उस सत्य बाप ने ही सच खंड बनाया था, सत्य युग बनाया था। वो हेवनली गॉड फादर है। दो रूप हैं उसके, एक आत्मिक रूप बिंदु और दूसरा बड़ा रूप लिंग। वो है माता का यादगार। माता पहले कन्या होती है, छोटा रूप होता है, जब माता बनती है तो चौड़ी होती जाती है, तो वो बड़ा रूप है माता का यादगार। एक ही है जो माता भी है सारी सृष्टि की, सारी सृष्टि का पिता है। सब पिता नहीं होते हैं, ब्रदरहुड कभी नहीं होता है, सब ब्रदर फादर होते हैं क्या? फादर तो एक होता है, वो फादर ही है जो आकर अपना परिचय देता है कि मैं कैसे शिवलिंग स्वरूप हूं, लिंग रूप हूं, भले गड्ढे में रखा हुआ दिखाया जाता है तो भी पतित नहीं हूं, शक्ति छीन नहीं होती है। वो कभी पतित नहीं होता। जब त्रिकालदर्शी उसमें प्रवेश होता है संगम युग में, उस पुरुषोत्तम संगम युग में, वो एक बार वो रूप धारण कर लेता है, संपन्न रूप शिवलिंग, बाप समान शिव बनता है बिंदु, और लिंग बड़ा रूप भी बनता है शरीर, जो शरीर पांच तत्वों का पुतला, वो पांच तत्व प्रकृति कहे जाते हैं। तो दो रूप हैं, पुरुष और प्रकृति, इन दोनों के मेल से नई दुनिया तैयार होती है। वो परम पुरुष है प्रैक्टिकल में, शिव परम पुरुष है, लेकिन उसको अपना शरीर नहीं है, इसलिए वो प्रैक्टिकल कर्म करके नहीं दिखाता। जिसमें प्रवेश करता है उसको आप समान बनाता है, और आप समान जब वो बनता है शिव ज्योति बिंदु, तो जिस शरीर के द्वारा पार्ट बजाता है वो शरीर भी अविनाशी है, इसलिए वो शिवलिंग सदा शिव है, तीनों कालों में सत्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। और उस अविनाशी का परिचय वो बेहद का अविनाशी बाप ही दे सकता है। क्या कहा? बेहद के अविनाशी बाप दो हैं, परंतु जो आत्माओं का बाप है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो सारी मनुष्य आत्माओं को अपनी आत्मा का तो परिचय देता है कि मैं बिंदु हूं तो तुम बच्चे भी बिंदु हो। जैसा बच्चा वैसा बाप, जैसा बाप वैसा बच्चा। बच्चा सांप जैसा लंबा तो बाप भी सांप जैसा लंबा। बच्चा चींटी जैसा छोटा तो बाप भी चींटी जैसा छोटा। बच्चा हाथी जैसा ढुलडोल वाला तो बाप भी हाथी जैसा ढुलडोल वाला। तो तुम बच्चे बिंदु बिंदु आत्माएं, तुम्हारा बाप भी ज्योति बिंदु, परंतु जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, उसको अपना शरीर नहीं है, इसलिए वो साकार का परिचय सिर्फ उसी साकार को देता है। क्या कहा? वो बाप अपना वर्षाए मनुष्य आत्माएं जिनकी संख्या 500-700 करोड़ है, उन 500-700 करोड़ बच्चों में जो बड़ा बच्चा है, जो शिवलिंग कहा जाता है, उस शिवलिंग को ही अपना परिचय देता है वो। और अपना वर्षा भी देता है। क्या? निराकार बाप है निराकार आत्माओं का, तो निराकारी ज्ञान का वर्षा देता है। किसको देता है? बड़े बच्चे को देता है। जो बड़ा बच्चा बड़ा काम करके दिखाए, जो मंत्र बताया महामंत्र, क्या? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन कह सकता है मेरे मन में समा जा? आत्माओं का बाप को मन ही नहीं है, वो नहीं कह सकता मेरे मन में समा जा। तो मनुष्य आत्माओं का जो बाप है, उसको मन है, वो कहता है कि मैं पुरुषार्थ करके जब बाप समान स्टेज पहले पहले प्राप्त करता हूं, तो मेरे स्वरूप में तुम सब बच्चों को समा जाना है। मेरा क्या स्वरूप? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अरे तेरे मन में क्या है? क्या है तेरे मन में? बिंदु। क्या है? बिंदु। तो सब बच्चों को निसंकल्प बिंदु बनना पड़े। क्या? जो अलग 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 संकल्प सबके चल रहे हैं, 500-700 करोड़ मनुष्यों के सबके अलग अलग संकल्प हैं कि एक संकल्प है, तो सब संकल्पों को समाप्त करके एक के संकल्प में समा जा। उस एक के संकल्प में है वो शिव ज्योति बिंदु। तो उस निरंतर याद में जो समाते जाएंगे, और जिस नंबर में समाते जाएंगे उसी नंबर में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के पार्ट बजाएंगे। जिस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अव्वल नंबर में कौन आएगा? कौन आएगा? मनुष्य सृष्टि का बाप जो शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, वो शिव है लेकिन उसको लिंग अपना नहीं है। ब्रह्म वाक्य में बोला तो है और देवताओं की अन्य इंद्रियां पूजी जाती हैं और मेरा सिर्फ लिंग ही पूजा जाता है। किसने कहा? इसने कहा या उसने कहा? है मनुष्य सृष्टि का बाप को ही लिंग है, उसको तो लिंग है ही नहीं। लिंग क्या? कोई भी इंद्रिय नहीं है। तो वो कहता है कि अन्य देवताओं के अन्य इंद्रियां पूजी जाती हैं, नेत्र कमल, हस्त कमल, मुख कमल, पाद कमल, लेकिन मेरा सिर्फ लिंग पूजा जाता है। मेरा माने ओ शिवलिंग स्वरूप संपन्न रूप। वो कहता है जब तक वो संपन्न नहीं है तब तक शंकर है, लिंग नहीं है। इसलिए शंकर की सभी इंद्रियां पूजी जाती हैं, शंकर की मूर्ति पूजी जाती है। शंकर अमूर्त नहीं है, हाथ पांव नाक आंख कान शंकर को हैं या नहीं है? हैं। इसलिए उसे अव्यक्त मूर्त नहीं कह सकते। वो पुरुषार्थी है, याद का पुरुषार्थ करता है, अपने से ऊंचे को ही याद किया जाता है। वो संपन्न नहीं है, कौन? शंकर। जब संपन्न हो जाता है निरंतर याद में टिक जाता है। किसकी याद है? शिव ज्योति बिंदु की याद में निरंतर टिक जाता है, तब उसको कहा जाता है अव्यक्त मूर्ति। इसलिए कहा जाता कि वो साकार शरीरधारी तो है लेकिन मन बुद्धि से इंद्रियों को याद नहीं करता, इसलिए इंद्रियां नहीं दिखाई जाती। तो बताया उस बेहद के मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय, बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता। दो बेहद के बाप हैं, एक मनुष्य सृष्टि का बाप और एक आत्माओं का। कौन सा बाप दे सकता है मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय? आत्मा का बाप देता है। अच्छा, 80 साल में किसको किसको पता चल गया? 80 साल में किसी को पता चला कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? और पता चला है तो किसी को पक्का पता चला या कोई अनिश्चय बुद्धि तो नहीं बना? मृत्यु के गाल में तो कोई नहीं चला गया? अभी भी अनिश्चय बुद्धि मृत्यु के गाल में जा रहे हैं या नहीं जा रहे? तो मृत्यु लोक है या अमर लोक है? मृत्यु लोक है। जब तक वो अमरनाथ नहीं प्रत्यक्ष होता, वो स्वयं अमर नहीं बनता, तब तक अमर भव का वरदान किसी को नहीं मिल सकता। अमर माने कभी भी न मरने वाला। देह से ही मरना होता है, देह त्यागना माना मरना। तो देह का भान त्यागना सदा के लिए, वो अपना परिचय स्वयं देता है। तभी सदा के लिए देह भान त्यागा जा सकता है। बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता, वो दे सकता है। मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय वो देता है, नहीं देता है तो उसे कैसे मालूम पड़ गया है? अगर नहीं देता है तो उसे कैसे मालूम पड़ गया है? सृष्टि का बाप अपना परिचय अपने आप लेता है या वो देता है? वो देता है। तो सबको क्यों नहीं दिया? उसने एक को क्यों दिया? पार्शियल चीज क्यों करता है? बोला है अव्यक्त वाणी में, बाप दादा किसी का पार्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, न बाप न दादा बेहद का, न आत्माओं का बाप, न आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच बड़ा भाई, वो बाप माने दादा। किसी को कोई परिचय दोनों में से नहीं दे सकता। अपना परिचय हरेक आत्मा अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपने ही वाचा से, अपने ही वाइब्रेशन से अपना अपना परिचय हरेक देगा। कोई आत्मा का परिचय कोई दूसरा नहीं दे सकता। राम वाली आत्मा होगी तो वो अपने मुख से अपना परिचय देगी, कृष्ण वाली आत्मा होगी तो वो अपने मुख से अपना परिचय देगी, राधा वाली आत्मा होगी तो वो अपने मुख से अपना परिचय देगी, न वो देगा और न वो देगा। 84 जन्मों के बारे में या कम जन्मों के बारे में किस आत्मा ने क्या क्या पार्ट बजाया है, वो ही आत्मा ज्यादा जानेगी, वो कोई दूसरा जानेगा है? वो ही जानेगी। इसलिए बताया कि मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय वो बाप स्वयं मनन चिंतन मंथन करे अपने बारे में, तो उसको अपना परिचय मिलेगा। मनन चिंतन मंथन अपने बारे में नहीं करेगा तो परिचय नहीं। इसी तरह हर आत्मा को अपना अपना मनन चिंतन मंथन करना पड़े कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरा पार्ट क्या है। न मनुष्य सृष्टि का बाप किसी का पार्ट बताएगा, इशारा देंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं बताएंगे। और देवात्माओं को इशारा ही काफी होता है। जो देवात्माएं होंगी वो इशारे को पकड़ेंगी, जिस नंबर की देवात्माएं होंगी उसी नंबर पर इशारों को पकड़ेंगी। अव्वल नंबर की देवात्मा होगी तो अव्वल नंबर में पकड़ेगी, लास्ट नंबर की देवात्मा होगी तो लास्ट नंबर में पकड़ेगी,
33वें करोड़ नंबर की आत्मा होगी देवात्मा
तो अंत में अपना परिचय पकड़ेगी। इसलिए बताया कि जितनी जुगाली करेगी गाय उतना उसका रस बनेगा, खून बनेगा। हम भी जानते हैं जो खाया उसको जितना चबाएंगे तो जल्दी खून बनेगा, कम चबाएंगे आओ खून नहीं बनने वाला जल्दी। ये संकल्पों का खून है, आत्मा का खून, देह का खून नहीं। तो संकल्पों का शुद्ध खून बनाना हो, फर्स्ट क्लास होम्योग्लोबिन बनाना हो बेहद का, तो क्या करें? है क्या करें? मनन चिंतन मंथन करें अपने पार्ट के बारे में। कैसे मनन चिंतन मंथन होगा? ब्रह्मा कुमारियां तो बताती हैं मनन चिंतन करने का तरीका। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, ये है मनन चिंतन। क्या इसे मनन चिंतन मंथन कहेंगे या रट्टा कहेंगे? मनन चिंतन मंथन करने का मतलब पहले बाप को पहचानो, तब अपने वंश की स्मृति आएगी। हमारा बाप किस वंश का है? क्या कहा? जो भी दुनिया में मनुष्य रूप में बच्चे पैदा होते हैं उनको अपने बाप के वंश का परिचय होता है या नहीं होता है? हमारा बाप इस्लामी है, हमारा बाप क्रिश्चियन है, हमारा बाप बौद्धी है, हम भी बौद्धी हैं, हमारा बाप सत्य सनातन देवी देवता धर्म का पक्का है, हम भी देवी देवता धर्म के पक्के हैं। तो पहले बाप का परिचय होना चाहिए। बाप को पहचानेंगे तो अपने को पहचानेंगे, बाप को नहीं पहचाना तो अपने वंश का भी परिचय नहीं होगा। तो कैसे पहचानेंगे? अरे बाप को कैसे पहचानेंगे? कौन देगा बाप की पहचान?
बाप की दे।
है?
बाप से दे।
कैसे मिले बाप? कहां पकड़ें बाप को? कब आएगा बाप हमारे पास? कहते हैं कि उसका नाम खुदा है, वो खुद आता है। क्या? वो खुद आता है, बुलाने से नहीं आता है। कब आता है, कब जाता है, कहां जाता है, ये कोई को पता ही नहीं चलता। पता चलता है? अरे उसका तो पता नहीं चलता, वो ब्रह्मा बाबा ने भी बोला कि शिव बाबा कब आते हैं कब चले जाते हैं, मेरे को भी पता नहीं चलता। वो तो निराकार की बात हुई, लेकिन मनुष्य सृष्टि का जो बेहद का बाप है वो भी यही पार्ट बजाता है। बाप का पक्का पक्का फॉलोअर है या नहीं है? पक्का फॉलोअर है। जब बाप का पता नहीं चलता आने जाने का तो उसका भी आने का और जाने का पता नहीं चलता। चलता है? है? चलता है? नहीं चलता। अगर चलता भी है तो उन बच्चों की पहचान बताइए, पता है? है? किसी को नहीं पता है? बताइए, बाप के बगैर बच्चे नहीं रह सकते और बच्चों के बगैर बाप नहीं रह सकता। लगातार कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा। तो जिनका लगातार कनेक्शन जुड़ा हुआ है वो तो जानते होंगे, अरे जानते होंगे या नहीं जानते होंगे? जानते होंगे। कि कब आता है, कहां आता है, कहां जाता है, जो बताया पहले भी अव्यक्त बाप दादा ने, बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है। बोला या नहीं बोला? तो कोई बच्चों को सौगात दी होगी या नहीं दी होगी? ऐसे फालतू बोल दिया। तो जिन बच्चों को वो नई दुनिया की सौगात मिली है उनसे पूछा, नई दुनिया में जाना आना करते हो? नई दुनिया के संगठन की सौगात मिली होगी तो जाना आना भी करते होंगे, नहीं मिली होगी तो जाना आना करेंगे? है? नहीं करेंगे। तो हरेक अपने से पूछे कि मैं बाप के कितने नजदीक हूं, मेरी आत्मा रूपी मणका कौन सी माला में किस नंबर में बाप के नजदीक है? आठ की माला में मैं नजदीक हूं या दूर हूं या हूं ही नहीं? 108 की माला में बाप के नजदीक मणका है या दूर है या बीच में है या हूं ही नहीं? चलो अभी तो रिजल्ट ही आउट नहीं हुआ है। जो रिजल्ट आउट हुआ है वो संक्षेत्र की बात है कि संक्षेत्र के बाद टू लेट का बोर्ड लग गया। किनके लिए? जो नर से नारायण बनने के पुरुषार्थी थे, जिन्होंने लक्ष्य लिया था हमें नर से नारायण ही बनना है, या जिन्होंने लक्ष्य लिया था हमें नारी से नारायणी ही बनना है, पक्का पक्का संकल्प लिया ज्ञान में आने के बाद, फाउंडेशन ही ऐसा डाला। तो उन आत्माओं के लिए 76 से 10 साल पहले ही वाणी में बोल दिया। क्या बोला था? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो 76 आता है, लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, मन बुद्धि रूपी आत्मा में प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा, तो उन लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा को ही महसूस होगा पहले या कोई दूसरे को महसूस होगा? लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा को पता चलता है कि मेरा पार्ट ये है। उन आत्माओं के अंदर, उनकी मन बुद्धि में उनके पार्ट की प्रत्यक्षता होना मना बाप की प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया गया। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है? मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, जो मनुष्य सृष्टि में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, वो है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। आत्माओं का बाप तो कहता है ब्रह्मा के मुख से, मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो सोमनाथ मंदिर में जो लिंग था और उसमें हीरा था, प्रवृत्ति मार्ग की यादगार, एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी, जिसके सामने आज भी जाकर कहते हैं मंदिरों में, तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता, वो एक लिंग हिस्ट्री में विख्यात है, राजघरानों में एक लिंग भगवान की पूजा होती रही। इसकी पूजा होती रही है एक लिंग भगवान, दूसरे को हम भगवान नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे है? दो लिंगों को, तीन लिंगों को, चार लिंगों को, मुसलमानों की तरह, क्रिश्चियंस की तरह हम पति परमेश्वर नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे? किसको मानेंगे? एक लिंग को मानेंगे। तो वो प्रत्यक्षता संक्षेत्र में बाप की प्रत्यक्षता वर्ष के रूप में बी केज ने भी मनाया, पीबी केज कहने वालों ने भी बनाया। उसके लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। अब कोई भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी डायरेक्ट नहीं बन सकता इस जन्म में। अगले जन्म में अगला शरीर लेकर के लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं, लेकिन इस संगम युगी जन्म में कोई भी डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी नहीं बन सकता। अभी फिर बोला ब्रह्म वाक्य में, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में है 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो 17-18 में ये टाइम पूरा होता है, क्योंकि 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष था और 77 में संपूर्णता वर्ष मनाया गया। तो 77 वर्ष पूरा होने के बाद 40 वर्ष गिनेंगे तो कौन सा सन आता है? 2018 आता है। 2018 में 40 वर्ष पहले एक युगल प्रत्यक्ष हुआ, उनके लिए टू लेट का बोर्ड लगा। अभी 40 वर्ष पूरे होने पर 8 आत्माओं की प्रत्यक्षता होने वाली है। नंबर बार अष्टदेव, सारी सृष्टि के पूर्वज, पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाले,
सारी मनुष्य सृष्टि में जिन आठ आत्माओं ने पहले पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया वो अब संसार में प्रत्यक्ष होने वाले हैं। 2018 से गुप्त राजधानी स्थापन होनी है, संपूर्ण राजधानी, ऐसी संपन्न आत्माओं का संगठन जिस संगठन में ब्रह्म वाक्य बोला गया, क्या बोला है? ये ब्राह्मणों का संगठन रूपी किला ऐसा बन जाएगा कि इस किला में, इस संगठन में कोई भी पांव नहीं रख सकेगा, भिखारी। अभी क्या हो रहा है? अभी तक क्या होता रहा है? इस ब्राह्मण संगठन में भिखारियों का प्रवेश हो रहा है या नहीं हो रहा है? संघ दोष अन्न दोष में आने वालों का प्रवेश हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन अब क्या होने वाला है? ऐसे ब्राह्मणों का संगठन बनेगा, ऐसा संगठन रूपी किला तैयार होगा जिसमें एक भी भिखारी पांव भी नहीं रख सकेगा। इसलिए अभी से अलर्ट हो जाना चाहिए और अव्यक्त संदेश में ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी के द्वारा अंतिम संदेश में भी कह दिया। क्या बता दिया? ऐसे मत समझना, अभी 20 साल पड़े हैं पुरुषार्थ के लिए। दुनिया वालों से कहा या बच्चों से कहा है? बच्चों से कहा। दुनिया वाले तो पुरुषार्थ ही नहीं जानते क्या होता है। बच्चों से कहा कि 100 वर्ष का संगम बताया, 36 से लेकर 2036 तक 100 साल पूरे होते हैं। तो ऐसे नहीं समझना, तुम्हारा पुरुषार्थ संपन्न बनने के लिए अभी 20 साल पड़े हैं। फिर बोला 20 साल तो है ही नहीं। फिर ये नहीं बताया कि 20 साल नहीं है तो कितने साल हैं? 19 साल होंगे। अरे 18 साल बता देते, 15 बता देते, 11 बता देते। बताया? बताने वाले को खुद ही नहीं मालूम होगा, इतना पक्का जान लिया। क्या? कि तुम बच्चों को जिनको तुम कह के बोला उनको सतो प्रधान बनने में 50 वर्ष पूरे होने चाहिए 76 से। तो कब तक होंगे 50? 2028 तक। तो मनन चिंतन मंथन करना है कि हमारी आत्मा 2028 तक 108 की माला में आने का पुरुषार्थ कर रही है। योग्य पुरुषार्थ कर रही है या अयोग्य है? इन 10 वर्षों में कैसी स्टेज बनानी है? 108 की लिस्ट में आने वालों को कैसी स्टेज बनानी है?
मना भव, मेरे मन में समा जा। जो बोल रहा है मेरे मन में समा जा, उसके मन में क्या है? एक ज्योति बिंदु, बाकी नौ संकल्प। क्या? एक ज्योति बिंदु के अलावा और कोई संकल्प है? होगा है? होगा नहीं। तो 108 की लिस्ट में 10 वर्ष में जो आने वाले होंगे, उनको ये पक्का करना है। क्या क्या पक्का करना है? कि 10 वर्ष में हमें एक बाप की याद रहे। कौन से बाप की है? साकार में निराकार बाप की याद करें। क्यों निराकार की क्यों नहीं रहे? साकार से क्या लेना देना? निराकार बाप को याद करेंगे तो हम निराकारी वर्षा नहीं ले सकते क्या? है? ले सकते, ले सकते हैं ना। माने 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में हम बाप का बड़ा बच्चा बन सकते। अरे बन सकते ना? अरे अरे बन सकते कि नहीं? अरे बाप का बड़ा बच्चा बन सकते है कि नहीं बन सकते? अरे बाप का बड़ा बच्चा मनुष्य सृष्टि में, माने मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप बन सकते है या नहीं बन सकते? है 10 वर्ष में है? 10 वर्ष में बनेंगे? अरे कितने वर्ष में बनेंगे? है? है? कितने वर्ष में बनेंगे? है? 40 वर्ष में बनेंगे। 40 वर्ष तो पूरे हो गए। नवंबर दिसंबर दो महीने ही रह गए। है? दो महीने में अपनी आत्मा को परखना है कि ऐसा पुरुषार्थ कर रही है कि मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो जाए। फिर 76 में कौन प्रत्यक्ष हुआ था? हा? अरे वो पहले ही प्रत्यक्ष हो गया, तो अब दोबारा प्रत्यक्ष होंगे क्या?
होगा
भविष्य में, फ्यूचर में। 76 में आत्माओं का बाप प्रत्यक्ष हुआ, मन बुद्धि का बाप है। 76 में कौन प्रत्यक्ष हुआ? राम बाप प्रत्यक्ष हुआ। वो मनुष्य सृष्टि का बाप है या नहीं है? है। तो अब कहां से मनुष्य सृष्टि के बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे? हाँ, मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, जो इस मनुष्य सृष्टि में तीनों काल में पार्ट बजाता है, वो शंकर के नाम रूप से जाना जाता है। कि दुनिया में कोई नहीं जानता कि शंकर का मां बाप कौन है। शंकर का जन्म कब हुआ और उसकी मृत्यु कब होगी? शंकर को जन्म मरण के चक्र से न्यारा माना जाता है या जन्म मरण के चक्र में आने वाला है? न्यारा माना जाता है। माना वो 84 जन्मों में कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, अनिश्चय बुद्धि नहीं बनता, सदा निश्चय बुद्धि, क्योंकि गीता में लिखा है निश्चय बुद्धि की पहचान निश्चय बुद्धि विजय। जन्म जन्मांतर जो भी पार्ट बजाएगा उसकी बुद्धि में विजय ही विजय लिखी हुई है। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक नारायण ही है शास्त्रों में जिसको दिखाया जाता है कि उसकी कभी भी वो कभी भी हार नहीं हुई, बाकी सब मनुष्य आत्माओं की हार होती है, देव आत्माओं की भी हार होती है, लेकिन नारायण की कभी हार नहीं होती। उसकी पहचान बताई क्या? निश्चय बुद्धि विजय थी। उसकी कभी भी अनिश्चय की होने की बात है ही नहीं। संगम युग में भी अनिश्चय रूपी मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होता। तो बताया जो पैराडाइज का निर्माण करते हैं बाप, बाप बच्चों के लिए घर बनाते हैं या नहीं बनाते, सुख साधन इकट्ठा करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना। तो बाप को वो सुख साधनों की प्रॉपर्टी बच्चों को अर्पण करनी होती है, उसको कहते हैं बाप का वर्ष। तो बाप पैराडाइज निर्माण करते हैं, उनका नाम है हेवनली गॉडफादर, हेवन स्थापन करने वाला फादर। अच्छा, जो हेवन स्थापन किया था वो पहले तो नई दुनिया थी, वो दुनिया अभी पुरानी बन गई है। शूटिंग पीरियड में भी देखो, शूटिंग पीरियड में ब्राह्मणों की दुनिया पुरानी बन गई या नहीं बन गई? कब है? कब पुरानी बन गई? कब से है? अरे घोषणा की थी 10 वर्ष की पुरानी दुनिया का विनाश और 10 वर्ष में नई दुनिया की स्थापना। लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे क्या लिखा है? 66-67 में 67 तक ये चित्र तैयार हो चुका था पूरा। उसमें लिखा है 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश। कौन सी पुरानी दुनिया का विनाश? ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश। और ये भी बता दिया, तुम बच्चों को ही बताया कि तुम अपनी संस्था का नाम वो शब्द ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा देना और आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिख देना।
کیوں رکھ دیا؟ تو نئی دنیا استھاپن ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ابھی وہ نئی دنیا جو استھاپن ہوئی تھی اس کے لیے بول دیا کیا کہ تم بچے ایڈوانس کے تمو پردھان سے ستو پردھان بننے میں کتنے سال؟ 40 سال لیتے ہو. تو اب تم بچے کیسے بن گئے؟ ارے تمو پردھان بن گئے یا ستو پردھان بن گئے؟ ستو پردھان بن گئے. اندر اندر شیشا دیکھا ہے؟ دیکھا؟ اپنے سنکلپوں کو چیک کیا؟ برہم واکی تو ہے مرلی میں. تم بچے بھی درشٹی کی 10-20-50 بھولے روز کرتے ہوگے. درشٹی کی کیا بھول ہوتی ہے؟ جو بھول ہوتی ہے اسے کدرشٹی کہتے ہیں یا درشٹی کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کدرشٹی. کو منے خراب. وہ درشٹی نہیں جو رادھا کرشن کی درشٹی تھی. لکشمی نارائن کے چتر میں نیچے ستیوگ میں دکھایا کرشن کی درشٹی رادھا میں ڈوبتی، رادھا کی درشٹی کرشن میں ڈوبتی. وہ درشٹی ستو پردھان درشٹی کو درشٹی نہیں کہیں گے. اگر رادھا کی درشٹی کرشن کے علاوہ کوئی اور میں پڑے تو کیا کہیں گے؟ کدرشٹی، بیبیچاری درشٹی. تو بتایا کہ تم بچے تمو پردھان بن گئے یا ستو پردھان بن گئے؟ تمو پردھان بن گئے. ابھی باپ آئے ہیں، تمو پردھان دنیا کو نئی دنیا پیراڈائز بنانے کے لیے جو شاستروں میں گائن ہے کہ برہما نے 3 بار برہمنوں کی سرشٹی رچی اور 3 بار بگاڑ دی. پہلی بار رچی اوم منڈلی نام کی سرشٹی، پھر دوسری بار رچی 1947 میں برہما کماری ودیالے نام کی سرشٹی، پھر تیسری بار رچی 1976 میں آدھیاتمک ایشوری وشو ودیالے نام کی سرشٹی، ایڈوانس برہمنوں کی سرشٹی. اب وہ تیسری بار رچی ہوئی سرشٹی بھی تمو پردھان ہو گئی، پروف بھی بتا دیا کیسے کیسے بچوں کی درشٹی تامسی بن چکی، بیبیچاری درشٹی بن چکی، کدرشٹی بن چکی. کوئی بچہ ایسا تو نہیں ہے جو سمجھتا ہماری کدرشٹی نہیں ہے. ہماری بیبیچاری درشٹی کبھی نہیں بنتی. ایسا کوئی ہو تو ہاتھ اٹھاؤ، گھماؤ، بتاؤ. ایسی تمو پردھان درشٹی بن گئی وہ بھی ویروپ آتماؤں کی، رودر بچوں کی، रुद्र ज्ञान यज्ञ में जिन्होंने पूर्व जन्म में भी पहले पहले पार्ट बजाया था, जो आदमी सो अंत में, तो ऐसी तीसरी ब्राह्मणों की सृष्टि भी अभी तामसी बन गई, इसलिए ब्रह्मा को पसंद नहीं आई। तो क्या किया है? बिगाड़ दिया। 76 में बिगाड़ा था तो क्या सब मर गए थे? शरीर छोड़ गए थे क्या? 76 में जब ब्रह्मा ने दूसरी बार रची हुई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की सृष्टि को बिगाड़ा तो सभी ने शरीर छोड़ दिया था क्या? है हाँ, अनिश्चय बुद्धि बन गए कि 76 के विनाश की घोषणा की थी, उस 76 का विनाश तो हुआ ही नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ने झूठी बात बोली, मने ब्रह्मा बाबा में शिव बाप नहीं आता होगा, सच्चा बाप नहीं आया होगा, इसलिए विश्वास उठ गया, अनिश्चय बुद्धि बन पड़े। बेसिक ब्राह्मणों में जो अनिश्चय बुद्धि बने, मन मृत्यु हो गई। लेकिन गीता में लिखा है ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिनकी मृत्यु होती है उनका जन्म भी जरूर होता है, जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु भी जरूर होती है। तो ब्रह्मा की दूसरी बार रची हुई सृष्टि में जिनको अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु प्राप्त हुई, वो जन्म लेंगे या नहीं लेंगे? है? जरूर लेते हैं। तो वो एडवांस में आकर के जन्म ले गए। तीसरी दुनिया में आ गए। जो तीसरी दुनिया ब्राह्मणों ने रची, ब्रह्मा ने रची, ब्राह्मणों का संगठन तीसरा संगठन, और अभी 40 वर्ष में वो तीसरा संगठन ब्राह्मणों का तामसी बन गया, अभी फिर विनाश। तीसरी बार भी ब्रह्मा ने संगठन, तीसरी बार रची हुई ब्राह्मणों की दुनिया बिगाड़ दी, और नई दुनिया 8 की शुरू होती है। कितनों की? 8 की। तो जो 8 की लिस्ट में आने वाले होंगे वो तो बुद्धि में सोचते होंगे ना कि मैं बाप के कितने नजदीक हूं। नजदीक हूं या दूर हूं, वो 8 क्या सोचेंगे? हैं? नजदीक अनुभव करेंगे प्रैक्टिकल में या दूर अनुभव करेंगे? हैं? नजदीक अनुभव करेंगे। तो जो नजदीक अनुभव करेंगे उनको भी माया की परीक्षा से पसार होना पड़ेगा या नहीं? है? माया का फाइनल पेपर। कहते हैं माया किसी को नहीं छोड़ती, अगर किसी को छोड़ दे तो जिसको छोड़ देगी वो आत्मा दुनिया में आधा राज्य बटाए लेगा। इसलिए किसी को नहीं छोड़ती। माया मायापति के सिवाय किसी को छोड़ती नहीं। अगर छोड़ दे तो माया का राज्य चला जाएगा। चला जाएगा या रह जाएगा? चला जाएगा। इसलिए वो किसी को नहीं छोड़ती, सबको अनिश्चय बुद्धि बना देती। ऐसा फाइनल पेपर अभी आने वाला है जिसका इशारा अभी अंतिम संदेश में ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी के द्वारा दिया। क्या बड़े से बड़ा बांबू कौन सा है? परमात्मा प्रत्यक्षता बांबू। जब बांबू फूटता है तो क्या होता है? बांब की बदबू से जो सूंघता है वही खत्म। ये ग्लानी की बदबू का बांब छूटने वाला है। ऐसी ग्लानी का बदबू का भयंकर बांब छूटेगा जो अखबारों में, टीवीज में, लोकल टीवी चैनल्स में, नेशनल इंडियन टीवी चैनल्स में, दुनिया के टीवी चैनल्स में, रेडियो स्टेशंस में जोर से धड़ाका होगा। और विश्वास करने वाले, उन्हें चैनल्स पर विश्वास करने वाले, अखबार पर विश्वास करने वाले, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने वाले दुर्गति को पाएंगे या नहीं पाएंगे? हैं? पाएंगे। इसलिए बोला एक बाप से सुनना है और कोई की बात नहीं सुननी है। ओम शांति।